الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين. رواه البخاري. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پردہ نشین محترمہ، میری مائیں اور بہنیں، اور دور دراز سے سننے والے میرے سامعین اور سامعات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے ہمیں دینی تعلیم کے لیے جمع کیا ہے. جتنی کوشش ہونی چاہیے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے، اتنی کوشش درس میں شامل ہونے کی کرنی چاہیے. دین اسلام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ درس ریاض الصالحین میں آؤ گے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. درس ریاض الصالحین میں آنے سے بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ عورتوں کے لیے اسپیشل یہ پروگرام رکھا جاتا ہے. مردوں کو تو موقع مل جاتا ہے کہ وہ پانچ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، تو کبھی درس قرآن سن لیا، کبھی درس حدیث سن لیا، کبھی باہر سے آئی ہوئی جماعت کا پروگرام سن لیا، کبھی کوئی شیخ آ گئے تو ان کا بیان سن لیا. اب یہ بیچاری عورتیں گھروں میں رہتی ہے، گھر کے کام کاج بیٹھی رہتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ انہیں ایسی مجالس کی برکت حاصل کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. اسی نیت سے ہم نے ہر ہفتے ایک دین رکھا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عورتوں نے خاص سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی، مرد لوگ تو سنتے رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی خاص دین متعین کیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک ایک دین متعین کیا تھا. اس دن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی باتیں بتاتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دین اسلام یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے علماء، صلحاء اور محدثین، مفسرین اور مفتیان کرام کو پیدا کیا، جنہوں نے کئی کئی سال لگائے علم کو طلب کرنے میں، تو ان سے پھر امت کا فائدہ ہوتا رہتا ہے. کبھی مسئلے کی ضرورت پڑی تو مسئلہ پوچھ لیا، اور کبھی कोई फजाइल की ज़रूरत पड़ी तो उसको पूछ लिया, कभी दर्स सुनना है तो उसको सुन लिया, कभी तफसीर सुनना है तो उसको सुन लिया। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, दोनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। औरतें भी इल्म हासिल करें, औरतें भी दीन की तालीम में शरीक हो। ये बहुत बड़ी मजलिस होती है, इसमें शिरकत के बड़े फवाइद होते हैं। हमारे जिम्मे वो समझती है कि सिर्फ घर के कामकाज है, हमारा काम सिर्फ बच्चों की परवरिश करना है, हमारा काम सिर्फ खाना पकाना है, घर की बाकी अंदरूनी जरूरियात को पूरा करना है। ये एक पहलू है जिसका ताल्लुक मखलूक के साथ है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि उस औरत को अपने रब को भी राजी करना है, अपने अल्लाह को भी राजी करना, दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना है। इस दुनिया में अल्लाह की बंदगी बनकर जिंदगी गुजारना है और अपने खालिक और मालिक को राजी करना है। वो कैसे सीखे? ये कुरान ही से तो आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ने से और सुनने से तो आएगा। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला कदम इल्म को हासिल करना है, इल्म की मजालिस में बैठ करके फजाइल और मसाइल दोनों को सीखना है। जिस आदमी को इल्म ही न हो कि वो ऐसा है, जिस आदमी के पास इल्म ही न हो, कुछ भी न हो, वो तो ऐसा है जैसे उसे रास्ते का पता ही न हो, उसे रास्ते का पता ही न हो। तो नावाकिफ आदमी होता है जिसको रास्ते का पता नहीं होता है तो भटकता है कि मुझे जाना कैसे है। अगर किसी को बोल्टन का रास्ता ही पता ना हो तो फिर तो ग्लासगो की तरफ चला जाएगा, उल्टा ही चला जाएगा। इसीलिए जन्नत रखी अल्लाह पाक ने, जन्नत और जहन्नम का रास्ता क्या क्या है इसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए अगर रास्ते का पता हो तो चाहे सवारी लूली लंगड़ी हो, गधा और घोड़ा, लूला और लंगड़ा हो, लेकिन फिर भी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता मंजिल मकसूद तक इंसान पहुंच जाता है। तो इल्म का हासिल करना हकीकत में जिंदगी की रहनुमाई हासिल करना, पूरी जिंदगी किस तरह। टुडे द यंगस्टर्स गर्ल्स हैव नो टाइम, टुमारो दे गोइंग टू गेट मैरिड एंड ऑलरेडी सम ऑफ देम गॉट मैरिड, दे डोंट नो हाउ टू लिव विद हस्बैंड, हाउ टू परफॉर्म नमाज एंड व्हाट इज सुन्नत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहां ये इल्म का हासिल, मैं नहीं कह रहा हूं मुफ्ती बन जाओ सब, I'm not saying all of you become mufti or mufassir or muaddis or alima or bade bade darji, main nahi kehta hu. Itna ilm ka sikhna ke jo har mard aurat apni zindagi guzar sake Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tareeke ke mutabik, namaz ka ilm, wuzu ka ilm, roze ka ilm, zakat ka ilm, ghar mein rehne ka ilm, beton ke sath, betiyon ke sath, shohar ke sath, isi tarah har cheez ka jo zarurat ka ilm hai, अखलाक क्या है, गीबत क्या है, फुला क्या है, फुला क्या है, इन तमाम का सीखना तो फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है। डू बी गिविंग तालीम टाइम फॉर दैट टू लर्न दैट तालीम, कि इतना इल्म हमारे पास आ जाए कि जिसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार सके। वी हैवन गॉट टाइम टू लर्न दैट मच ऑल्सो, अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा, कयामत के दिन सवाल होगा कि तुमको मैंने इल्म दिया, तुमको मैंने उलमा दिए, तुमको मैंने मजालिसे दी, तुमको मैंने अकल दी, तुमको मैंने पैर दिए थे, आंखें दी थी, क्या कभी चल करके जाकर तुमने मेरा दीन हासिल किया था? ये सवाल हो, ये फर्ज है, लाजमी है। ये कौन सा इल्म फर्ज है जिससे हलाल हराम, जायज नाजायज, सही और गलत का पता लगा सके, इतना तो सीखना जरूरी है। शुरू में औरतों में दीन की मेहनत करने का जज्बा बहुत ही नजर आता था, सहाबियात की जिंदगी पर नजर डाले تو یہ دین کے میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی، انہوں نے بھی ایسا علم حاصل کیا کہ وہ بھی کیا ہے آگے بڑھ گئی. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ 124,000 صحابہ میں سے صاحب فتویٰ، یعنی فتویٰ دینے والے جو صحابہ عالم سمجھے جاتے تھے، بڑے عالم، اور دوسرے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے اور پوچھ کر عمل کرتے تھے. سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، نئی بات، صحابہ میں بھی وہ جماعت تھی جن سے، جیسے علماء کی جماعت ہے، مفتیان کرام کی جماعت ہے، لوگ صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے. ان کی تعداد پورے 124,000 میں اونلی 149 صحابہ کی ہے. کتنے؟ 149 صحابہ کی ہے جن سے صحابہ کرام مسائل پوچھ کر اپنے زندگی گزارتے تھے. چلو اس زمانے میں تو کتابیں نہیں تھی، بخاری شریف نہیں تھی، مسلم شریف نہیں تھی، فتاوا نہیں تھے، اور یہ شریعہ کاؤنسل نہیں تھا، اور یہ فون کا سسٹم نہیں تھا کہ فون کر کے پوچھ لے، اور یہ مفتی گوگل بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا. پھر بھی صحابہ کرام محنت کرتے تھے جا کر مسائل. آج سب کچھ ہے پھر بھی کوئی پوچھتا نہیں، آج سب کچھ ہے پھر بھی کوئی کسی کے اندر شوق نہیں. تو 124,000 صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف 149 صحابہ ایسے تھے کہ سارے صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے. تو یہ 124,000 صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان 149 میں سے 149 میں سے 14 صحابہ وہ ہیں جو ٹاپ لیول کے تھے. 14 صحابہ جو بالکل ٹاپ لیول کے علماء کہتے ہیں، ٹاپ لیول کے بڑے صحابہ، یہ بڑی چوٹی کا نالج ان کے پاس تھا. اور ان 14 کو اگر دیکھے تو ان میں سے ایک کون ہے؟ عورتوں میں سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. 149 میں سے 14، ان 14 میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کتنے مسائل ہے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، شوق تھا. معلوم ہوا کہ ان کے پاس بھی اتنا نالج تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی پردے کے پیچھے ان سے مسائل پوچھتے تھے. ماں تھی نا ام المومنین عائشہ رضی اللہ، صحابہ کرام کی ماں تھی. قرآن کہہ رہا ہے ازواجہ امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومن کی مائیں ہیں، ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. شادی اس عورت کی ہوتی ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کو اگر کرنا ہے دوبارہ شادی تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ فنا ہو گیا، ختم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے، اور زندہ کی عورتوں کی شادی دوبارہ بات نہیں سنائی. یہ چیز. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب قرآن مجید اترا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے قرآن مجید سننے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سب سے پہلی عورت ہے. عورتوں میں اتنا شوق تھا. وہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق اتری ہے تو کس کے پاس بھائی؟ خدیجۃ الکبریٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، اور حضرت خدیجہ کو آ کر بتلایا کہ سب سے پہلے آج مجھ پر یہ پانچ آیت اتری ہے. تو وہی تو تھی سب سے پہلے ایمان لانے والی. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی سارے مکہ والوں کو، تو اسلام میں شہادت کا، اسلام میں شہادت کا سب سے پہلا حصہ کسی کو ملا جو شہید ہوئی ہے وہ عورت ہے. نالج میں بھی دیکھو وہی کے اعتبار سب سے پہلی سننے والی، اور شہادت میں سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی وہ خاتون ہے جو شہید ہوئی ہے اللہ کے راستے. کتنے بڑے اعجاز ہیں عورتوں کے. تو اب
شوق ہی ختم ہو گیا لوگوں میں
مسائل کے سیکھنے کا، فضائل کے سیکھنے کا، ہوتا رہتا ہے، ابھی ہر ہفتے ایک بس چلتا رہتا ہے، یہ چلتا نہیں رہتا ہے، ایک دن آئے گا یہ میں بھی چلتا ہو جاؤں گا، اللہ میری عمر میں برکت دے، لیکن ایک دن ہم آئیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ ہو، تم میرے سامنے بیٹھے ہو، 100 سال کے بعد اس زمین پر تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے گزر جائے گا، واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو جتنے برکات اور جتنے مسائل اور جتنے فضائل ہم نے سیکھ لیے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھائی ہم مجلس میں بیٹھے، کچھ فائدہ ہو گیا، اور فائدہ ہی نہیں ہوا، وہ تو مجلس پوری مغفرت والی مجلس ہے، اللہ اس مجلس ہی کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایسی مجلسیں کہاں ملتی ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا درس ہوتا ہو اور ان کی حدیث کا درس ہوتا ہو؟ کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں کہیں نہیں ہوتے، ہوتے بس ہم ہر جگہ میں تو نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صحابیات، اور اسی طرح آپ کی بیٹیاں، بیٹیوں میں بھی حضرت عمر، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جی کہاں حضرت عمر ہے، دیکھو ایک ہے فاطمہ بنت خطہ، فاطمہ بنت حضرت عمر کی بہن، حضرت عمر کی بہن، ان کو دیکھو کیسے اپنے بھائی کو دعوت دیتی ہے، تھوڑا قرآن پڑھا ہے انہوں نے، تھوڑا قرآن سیکھا ہے، لیکن ایمان لا چکی ہے، تو اپنے بھائی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار لی اور ایسے ہلاتے ہلاتے نکلے گھر سے، آج تمہیں کسی طرح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، نکل گئے راستے۔ تو راستے میں ایک صحابی ملے، وہ کدھر جا رہے عمر، اس زمانے میں ان کا جلال بہت تھا حضرت عمر کا، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے، فرمایا تو شہید کرنے سے پہلے تیرے گھر میں جانا، تیری بہن بھی تو مسلمان ہو گئی ہے، تیرے بہنوں بھی مسلمان ہیں، اپنے گھر کی طرف دیکھ، بہن بہنوں ہی، یور سسٹر اینڈ برادر ان لا بوتھ آف دیم ایکسیپٹ دی اسلام، گو ہیو گو اینڈ سی۔ تو انہوں نے یہ سنا تو اور غصہ گیا، ہاں میرے گھر میں جن کو میں مٹانا چاہتا ہوں وہ میرے گھر میں کیسے آ گیا، اسلام کو مٹانا چاہتا ہوں، نبی مٹ جائیں گے تو اسلام مٹے گا نا، میرے گھر میں کیسے آ گیا۔ یہ یو ٹرن لیا انہوں نے، حضرت عمر نے اس طرح کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تلوار اور غصے میں جا رہے، جب دروازے کے پاس پہنچے بہن کے گھر پر، انہوں نے سنا باہر سے گھر میں کچھ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، گھر کے اندر میں ان کی بہن کچھ قرآن سیکھ رہی تھی کسی استاد سے، وہ دونوں میاں بیوی جو ہے قرآن سیکھ رہے تھے، اس وقت ابھی تو پردے کی آیت اتری نہیں تھی نا، ابھی تو نیا نیا ہے نا اسلام، سیکھ رہی تھی، ایک صحابی ان کو سکھا رہے تھے، دستک دی، بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گئے، اور بہن کو پتا تھا عمر کے غصے کا، تو جو صحابی ان کو پڑھا رہے تھے وہ تو چھپ گئے، مولوی صاحب کیا ہو گئے، چھپ گئے، اور برادر ان لا آلسو برادر ان لا بھی چھپ گئے، اور بہن گئی ہمت کر کے، تو بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی نا، وہ بھی تو ہمت والی تھی، دروازہ کھولا، اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، پوچھا کہاں ہے بنے ہی کدھر ہے برادر لو کدھر ہے، وہ تو ملنے کے لیے باہر گئے، پوچھا میں نے سنا تو مسلمان بن گئی، آئی ہیو ہرڈ یو بیکم مسلم، جواب دیا اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر کیا حرج ہے، اسلام ہی سچا دین ہے تو پھر کیوں میں ایکسپٹ نہ کروں۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ حقیقت میں مسلمان بن گئی تو غصہ آ گیا، جی، اور اتنے میں دیکھا بہنیں چھپے، چھوٹا مکان ہوگا، ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو بہن بیچ میں آ گئی، نہیں مارنا ہے ان کو، نہیں مارنا میرے شوہر کو، نہیں مارنا، لیکن پھر بھی چہرے پر زوردار
तमाचा मारा, बहन को ऐसा मारा, बीच में मता, एक जोरदार तमाचा हजरत उमर उमर ने मारा अपनी बहन को, तो वो तो नीचे गिर गई, उमर थे ना, नीचे गिरी और उनके मुंह से खून गिरने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह की बहन को, फातिमा को, फातिमा बिनते खत्ताब को ऐसा तमाचा मारा कि मुंह से खून निकलने लगा। वो दोबारा उठी और भाई के सामने खड़ी हो गई, कहने लगे उमर जिस मां का दूध तुमने पिया है उसी मां का दूध मैंने भी पिया है, तुम हमारे जिस्मों से रूह तो निकाल सकते हो मगर हमारे जिस्मों से ईमान नहीं निकाल सकते। ये लफ्ज थे बहन के, हमारे रूह ले लो यानी हमें मार दो लेकिन ईमान नहीं निकाल सकते। एक बार ईमान, ये उस जमाने की औरतों का ईमान था। सुनना ही बात, आजकल की यंग गर्ल्स देखो थोड़े पैसे के लिए क्या और क्या बेच देती है, ईमान किया आपने क्या क्या बेच देती है। ये उस जमाने की औरत, ये वल्फाज थे, बस इतना कहा जिस मां का दूध, जिस माई का दूध तुमने पिया है उस मां का दूध मैंने पिया है, तुम जान तो ले सकते हैं लेकिन ईमान नहीं निकाल सकते। ये दो अल्फाज, ये दो सेंटेंस हजरत उमर के दिल पर बिजली की तरह लगे, बिजली बनकर गिरे कि फौरन इनकलाब आ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु पूछने लगे अच्छा बताओ क्या पढ़ रही थी तुम, क्या पढ़ रही थी। ये सुनकर बहन ने कहा तुम पाक नहीं हो, गुसल करो पहले। देखा ये मसला सीखी है, मेरे जैसे ये कुरान पढ़ देखती ये कुरान मसला भी देखो छोट, अभी तो नई नई मुसलमान है और हम तो इस्लाम के घर में पैदा हुई है, मुसलमानों के घर में, बाप भी मुसलमान दादा भी मुसलमान और हमारी हालत देखो। फरमा जाओ गुसल करो पहले, मेरे अल्लाह का कलाम पकड़ना है तो पहले गुसल करके आओ। ये दावत दे रही बहन अपने भाई को। ये कहां है वो औरतें आज जिनके दिल में ईमान हो और वो अपने शोहर को दावत दे कि मस्जिद में क्यों नहीं जाता, कहां है वो औरतें, कहां है वो औरतें। चलो समझते हैं जोहर असर में तो मगरिब में तो काम पर होते हैं, ईशा में कौन सा काम करते हैं, फजर में कौन सा काम करते हैं, वो तो सोते सोने का वक्त है, वो टीवी देखने का वक्त है, वो ड्रामे देखने का वक्त है, वो खा पीकर कहवा पीने का वक्त है और मजे लगाने का वक्त है ना, आराम का वक्त है, खाओ पियो मजे करो। खुदाए पाक की कसम, खुदाए पाक की कसम, एक दिन आएगा कब्र में जाएंगे कोई आने वाला नहीं होगा, अकेले छोड़कर आ जाएंगे, अकेले छोड़कर। जैसे मैंने संडे को तफसीर में ये बात बयान की थी, वहां कोई नहीं होगा सिवाय मेरे आमाल, आमाल गुड आमाल बैड, गुड डीड्स और बैड डीड्स, नथिंग सिवाय अल्लाह की जात के, है ना। इसीलिए मैंने कहा था ना कि कब्र में जब सुलाया जाता है तो सुलाने का क्या तरीका है, और फिर वहां से 40 कदम एक आदमी पहुंचता है, ओनली 40 फुटस्टेप्स, इतने में मुनकर नकीर आता है और उसको बिठाता है, और वो बिठाया गया आदमी जिसको तुमने अभी दफन किया वो बैठा हुआ है, जाग रहा है, वो जाने वाले की जूते की आवाज सुन रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन कैसे निकलेगा, वो कहां से भाग सकता है जी, कौन होगा उसके साथ। इसीलिए वो साहबी क्या फरमाते हैं अपने बेटे को, मुझे दफन करने के बाद चले नहीं जाना, मेरी कब्र पर बैठना, मेरी कब्र पर खड़े रहना और मुझे इसाले सवाब करना, मुझे इसारे सवाब करना, कुरान पढ़ना, कलमा पढ़ना, ताकि मैं तुम्हारी आवाज को सुनूं और मुझे जबान पर कलमा आ जाए, मैं जवाब दे दूं। कितनी देर, सहाबी फरमाते अपनी औलाद से कितनी देर, फरमाया जैसे एक ऊंट को जबा करे, जबा करने के बाद उसकी चमड़ी निकाले और उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके तकसीम कर दिए जाए, इतनी देर सहाबे किराम ने फरमाया कम से कम असर से लेकर मगरिब टाइम का दरमियान का जो टाइम है इतनी देर तुम मेरी कब्र पर खड़े रहना ताकि मुझे उंस मिल जाए, वरना वहां तो क्या दफन किया भागे, दफन किया भागे। ओ मेरी बात समझते हो, कोई नहीं होगा कब्र में, कोई नहीं होगा, जो कुछ हम करके जाएंगे, जाओ ना देखो आज कब्रिस्तान में, जाओ देखो कौन किसके पास टाइम है जाने का, किसके पास टाइम है कब्रिस्तान वंस ए ईयर, वंस ए ईयर, और कभी कोई बड़ी रात हो या कभी ईद हो, कभी बकरीद हो या कभी शबे बरात हो, पहुंच गए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुर्दा अपनी कब्र में, मुर्दा अपनी कब्र में अपने बाप, अपनी मां, अपना भाई, अपनी बहन, अपनी औलाद, अपनी बीवी से और अपने रिश्तेदारों से इसारे सवाब का ऐसा उम्मीदवार है जैसे समंदर में, नहर में एक आदमी डूब रहा है, वो टिनके को तलाश करता है कि मैं बच जाऊं, कहीं लकड़ी पकड़कर, कोई चीज पकड़कर, ऐसे मुर्दा अपनी कब्र में इसारे सवाब का इंतजार करता है। ये वक्त खत्म हो जाएगा, ये वक्त चला जाएगा और एक दिन कब्र में सोना होगा। जितने भी, इसीलिए हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत में कोई रिग्रेट नहीं है, जन्नत में खुशी ही खुशी है, लेकिन वहां एक चीज का रिग्रेट होगा, एक चीज का रिग्रेट होगा जी, वो क्या है, काश के मैं दुनिया में ज्यादा टाइम को दीन के काम में लगा देता, या दीन के हासिल करने में, या जिक्रुल्लाह में, या नमाज में लगा देता, तो आज मेरा दर्जा जन्नत में यहां ना होता, मैं बहुत टॉप लेवल में जन्नत में पहुंचा हुआ होता। ये एक चीज का कल्प रहेगा, एक चीज का दुख रहेगा जन्नत, हालांकि जन्नत में कोई दुख नहीं सिवाय इस चीज के, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा टाइम है लोगों के पास, दुनिया की हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई टाइम नहीं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीजतुन, तुम दीनी मजालिस में बैठो, इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे मर्द भी औरत भी, फर्ज फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, कितना, जिससे तुम अपनी जिंदगी तो कम से कम गुजार सको। नहीं, मैं नहीं कह रहा हाफिज बनो, आलिम बनो, मुफ्ती बनो, शेखुल हदीस बनो, लेकिन इतना इल्म तो होना चाहिए कि मेरी नमाज, मेरा वाजिब छूट गया तो मुझे कैसे सिद्दे सव करना है, करना है नहीं करना है, एक सुन्नत छूट गई तो मुझे क्या करना है जी, एक फर्ज छूट गया तो मुझे क्या करना है, जकात में मुझे इतने पैसे क्या देना है, टाइम तो है नहीं किसी मुफ्ती साहब के पास बैठने का और किसी मुफ्ती साहब से मसला पूछने का, कम से कम इतना नॉलेज तो मुझे होना चाहिए कि मैं वुजू के फराइज तो जानू, वुजू के सुनन तो जानू, वुजू के मुस्तहबात को जानू, सोने की सुन्नत को जानू, खाने की सुन्नत को जानू, कुछ तो मैं सीखूं जो फर्ज है ताकि मेरी जिंदगी गुजर सके। कयामत के दिन इसका सवाल होगा, फर्ज चीज का तो सवाल होगा, फराइज का तो सवाल होगा, कहां टाइम है, बैठने का टाइम ही नहीं, मजलिस भागो घर पर, खबर नहीं कौन इंतजार करता है, और मस्जिद में कुछ रखो उठ के भागते भाई, कभी कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुरान का दर्ज ज्यादा आ जाए, मैं ज्यादा सीख लूं, वो भागते, कहीं हदीस का दर्ज ज्यादा आ, नहीं जाना, बस आराम करो, सो मजे करो नमाज के लिए, बस आराम करो, देखी जाएगी बाद में, ऐसी बात नहीं है। देखो यहां हजरत फातिमा क्या फरमाती है, जाओ गुसल करो, तुम तब किताब कुरान को टच कर सकते हो, वरना नहीं, वरना नहीं। वो गुसल करके आए, हजरत उमर को भी देखो, वो गुसल किया उन्होंने, फौरन गुसल करके आए, इतने में वो साहबी जो मौलवी साहब थे जो घर में छुपे हुए थे वो भी बाहर आ गए। अब तो भाई दो तालिबे इल्म जब कितना हो गया, तीन हो गए, बहन थी फातिमा थी और उनका शोहर था, अब तो हजरत उमर भी तालिबे इल्म बन गए, मदरसा भरा हो रहा है, घर की तालीम भर रही है, कहने लगे उमर मुबारक हो, अभी जोश आ गया मौलवी साहब को, मुबारक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों से आपके लिए दुआएं कर रहे थे, आज वो दुआ मैंने घर में आंखों से देख ली। हालांकि उसकी अगली रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तजम के पास तशरीफ ले गए, काबा के पास, और जाकर पकड़ कर कहा ला दो उमर है, उन दोनों में से एक को ईमान की दौलत से मालामाल कर दे। देखा, उमर एक तो अबू जहल का नाम है और एक है उमर इब्न खत्ताब है, इन दोनों में से एक को मुसलमान बना दे। दुआ कबूल हो गई किसके लिए, हजरत, दूसरे दिन सुबह में तो मसला हो गया, हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये साहबी कह रहे हैं आज मैंने आंखों से मेरे नबी की दुआ का मौजिजा देख लिया। क्यों, कैसे, तुम ए अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए या उमर इब्न हिशाम, ये कौन है, अबू जहल का नाम है, उमर इब्न खत्ताब हजरत उमर है और उमर इब्न हिशाम या अबू जहल का नाम है, उन दोनों में से एक से इस्लाम को मजबूत बना दे। दुआ क्या थी? उन दोनों में से, चूंकि दोनों चौधरी थे, ये भी चौधरी था बड़ा, वो भी, दोनों बराबर जलाली थे, इन दोनों में से एक को इस्लाम दे ताकि हमारे इस्लाम को क्या मिल जाए, मजबूती, हम आगे काम बढ़ाए, साहबे किराम को बढ़ाए। मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे हक में दुआ कबूल कर ली और तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मौलवी साहब कहते चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाता हूं। कहां ले गए? दार अरकम में, काबा के पास एक मकान था हजरत अरकम का, उस दार अरकम में ले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंडी लगाकर अंदर में सहाबे किराम को तालीम दे रहे थे। कुछ सहाबे थे अभी नए नए मुसलमान हुए थे ना, उनको सिखा रहे थे। दस्तक दी, एक सहाबी ने सुराख में से देखा, वो देखते ना भाई कौन है जी, भाई कौन है, देखा सुराख में से, देखा तो उमर है और उमर के हाथ में तलवार है। समझना ही बात, वापस जाकर कहा अल्लाह के महबूब, उमर गुस्से की हालत में तलवार लेकर खड़े हैं, क्या होगा अभी? और उमर से, उमर का जलाल बहुत था, सब लोग डरते थे हजरत उमर से। सैयदुल शहदा उस वक्त इस्लाम ला चुके थे, शहदा के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, वो इस्लाम ले आए थे। कहने लगे उमर के लिए दरवाजा खोल दो। देखा हजरत हमजा सैयदुल शहदा, वो क्या कहने लगे, दरवाजा खोल दो, अगर अच्छी नीयत से आए हैं तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, और अगर नीयत ठीक नहीं है, उन्हीं की तलवार उन्हीं की गर्दन होगी। किसने कहा यह बात? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। अब क्या, दरवाजा खोल दिया, हजरत उमर के तेवर ही बदले हुए थे, यानी बिल्कुल चेंजिंग थी ना चेहरे पर, अब आजिजी है, अंदाज तवाजू का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अत्तहिया की शक्ल में बैठ गए और फरमाए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो कहते रहे मोहम्मद, अब ये ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दर पर गदा फकीर बनकर आ चुका हूं। ये बात कही है हजरत उमर, जो नेमत आप लेकर अल्लाह के पास आए हो, मैं भी उस नेमत को लेने के लिए आया हूं। क्या था दिल, सुभान अल्लाह, एक बहन की मेहनत पर देखो, इस्लाम लाने की ख्वाहिश का इजहार किया और सहाबे किराम में इतनी खुशी हुई हजरत उमर के इस्लाम लाने से, अल्लाह अकबर, चूंकि दीन अभी मजबूत हो गया, इतनी खुशी हुई कि सबने मिलकर उस घर में नारे तकबीर लगाया। समझ में आई बात, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, और किसी साहबी के इस्लाम लाने पर वो खुशी जो हजरत उमर के इस्लाम लाने पर, सबने नारा लगाया और सारे सहाबा खुशी से रो रहे हैं। क्या कह रहे, हजरत उमर आ गए, इस्लाम ले आए, उधर दुआ की इधर मुसलमान बने। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त आ रहा है जोहर का, साहबा ने कहा हजरत नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह के रसूल हम यही नमाज पढ़ लेते हैं इसी घर में, इसलिए कि वहां जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, बहुत मुश्किल था, मारते थे वो लोग साहबे किराम को, जुल्म करते थे। हजरत उमर कहने लगे नैक जाना है काबे में, चलना है। ये देखा तकवीर, सबसे पहली तकवीर, सबसे पहली ताकत इस्लाम को मिल रही है, अब तो उमर मुसलमान हो चुका है। और वो कौन सा नंबर था उनका उस वक्त? नंबर 39 एक्सेप्ट इस्लाम, हजरत उमर का नंबर इस्लाम लाने में कौन सा है? नंबर 40 है, जो मुसलमान हुआ, चलो हरम शरीफ में जाकर हम सब नमाज पढ़ेंगे। चुनाचे सहाबा किराम, इधर हजरत उमर, बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर हजरत हमजा और सारे सहाबा, बाकी 39 जा रहे काबे की तरफ और रास्ते में ऐलान कर रहे हैं, और काबे मताब में जाकर उमर इब्नुल खत्ताब खड़ा है मुसलमान सबके सामने, आज इबादत करेंगे, पहला दिन है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे कोविड के बाद। कहते हैं यहां से सबसे पहले आज मताब में हम नमाज पढ़ेंगे, जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहे, बच्चों को यतीम करना चाहे, वो उमर के सामने मुकाबले के लिए आ जाए। ये ऐलान सबसे पहले हजरत उमर ने किया, पहली नमाज है और पहला ऐलान है हजरत उमर का। और कुफार में कहां हिम्मत थी हजरत उमर के सामने, वो तो वैसे भी डरते थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इस्लाम लाए बहन की दावत पर, समझ बात आई ना, इसलिए अल्लाह पूछेगा। हाँ, तो यहां एक कामयाब इंसान के पीछे किरदार औरत का है। किसका किरदार है? औरत का है। तो औरतें ये नहीं कह सकते हमारा काम खाना पकाना है बस, बच्चे लोग आफ्टर करना है, नहीं। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, मर्द और औरत दोनों पर जरूरत के मुताबिक इल्म का सीखना, फजाइल का सीखना, इल्म का सीखना क्या है, फर्ज है। हजरत इकरमा की बीवी को देखो, नाम सुना है हजरत इकरमा की बीवी? हजरत इकरमा तो कौन है, अबू जहल के बेटे। किसके बेटे हैं? लेकिन बाप शैतान है, बेटा वली है। देखो साहबी बन गए हजरत इकरमा इब्न अबी जहल, पहले काफिरों के जर्नेल थे, बहुत बड़े आदमी थे हजरत इकरमा, चूंकि बाप जैसा बेटा है, जर्नेल थे, सरदार का बेटा भी सरदार। उन्होंने जंगे बदर में कुफार की तरफ से आए थे, कहां से आए थे, कुफार को साथ लेकर आए थे बदर के मैदान में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गंदी गंदी नापाक बातें करते थे। जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को क्या दे दी, कामयाबी दे दी, मक्का फतह हो गया। तो ये इकरमा भाग गए, इकरमा क्या हुआ, भाग गए, कहीं मेरे कत्ल का हुक्म न दे दिया जाए कि मैंने बड़ा सताया है नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या किया जाएगा, मुझे भी कत्ल किया जाएगा। क्या कहां चले गए, जिद्दा, समंदर देखा है ना आपने, जिद्दा में समंदर है, तो वहां आप जब प्लेन से उतरने की तैयारी देख रहे नीचे समंदर है, तो ये एक कश्ती पर सवार होकर अब भाग रहे हैं यमन की तरफ, शाम की तरफ। तो उनकी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, हजरत इकरमा की बीवी किसके पास आई, नबी साहब, और इस्लाम कबूल कर लिया और कहने लगी, अल्लाह के नबी आप मेरे खाविन को, मेरे शौहर को अपनी पनाह में, मैं उसको पनाह दे सकती हूं, यानी आपके पास ले आऊं मैं उसको, आप उसको मारोगे तो नहीं, कत्ल नहीं करोगे, अमन दोगे, तो आप फरमा जाओ 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 ले आओ उसको, मैंने अमन दे दिया, उसको नहीं कत्ल करूंगा। अल्लाह के नबी इस्लाम ले आई वो औरत, और उसने अपने शौहर को बचाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए मेहनत कर रही है। देखा, वो पीछे चली कि अपने खाविन के बारे में पता लगाऊं किधर है। जब वहां पहुंची कि हो सकता है ये भागे वहां, उस जमाने में तो प्लेन नहीं था ना, गाड़ियां नहीं थी, बस यही एक शक्ल थी, घोड़े पर जाएगा किधर तक जाएगा, अंदर अंदर में, लेकिन अगर समंदर में कश्ती में बैठ गया तो फिर दूसरे मुल्क में पहुंच सकता है, तो वही पहुंच गई है। देखा वे कश्ती में बैठकर अपना सफर शुरू कर चुके हैं। उन्होंने, बीवी ने दूसरी कश्ती ली, पूछा किधर है इकरमा, कोई ऐसे किस्म का आदमी था बैठा भी इस कश्ती में गया है। तो बीवी ने दूसरी कश्ती ली और तेजी से सफर करती हुई कहा, जरा जल्दी करो भाई, मुझे अपने शौहर की कश्ती पकड़ना है, चली और उनसे बात की, आप वहां कश्ती पकड़ी गई, कहा आ जाओ इधर, या मैं इस कश्ती इसको घुमाओ, चलते हैं हम कहां जाएंगे, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं आपको। नहीं, वो तो मुझे कत्ल करेंगे, मैं नहीं आता, मारोन टू कम इज गोना किल मी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं मुसलमान बन गई और मैंने तुम्हारी पनाह ले ली है, चलो मेरे साथ। तो ये वहां से वापस हुई और मक्का मुकर्रमा आगे इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी ने ऐसा उनसे मुआनका किया और कहा, इकरमा किधर गए थे, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कितने मोहब्बत और प्यार के साथ। तो इसके पीछे देखो एक औरत का किरदार है, औरतों में दीन बहुत कमजोर है, दावत व तबलीग के हिसाब से भी, तालीम के हिसाब से भी, दर्स व तदरीस के हिसाब से भी। इसलिए हमने सोचा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम हर हफ्ते एक दिन ऐसा मुतय्यन करते हैं कि उसमें तालीम हो, ये तालीम ही है, ये तालीम हो, उसमें कुछ मसले हो, कुछ फजाइल हो, कुछ नमाज के बारे में, कुछ नमाज के फजाइल, कुछ रोजे के फजाइल, कुछ ईमान के फजाइल, कुछ वुजू की बातें, फलां, ये सुनाते सुनाते मुझे भी कितने साल हो गए, सुन रहे हैं आप, कितने सालों से, कितने सालों से मैं बेनती की मजलिस कर रहा हूं, करीबन बहुत साल हो गए जी। इसलिए जो लोग पाबंदी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको बेहतरीन जजा अता फरमाए, और जो लोग पाबंदी नहीं करते हैं उन्हें अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए, अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए कि हम ऐसी मदरसों में जाएंगे तो ईमान ताजा होगा, हम थोड़ी डील की तरफ चलेंगे। ऐसे हजारों वाकयात हैं जिनमें औरतों की तरबियती मजालिसों में सहाबियात आती थी और जाकर लोगों को खुद भी सही रास्ते पर चलती थी और अपने घर वालों को भी सही रास्ते की तरबियत करती थी। सहाबियात दीन की तालीम हासिल करने के लिए जरूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी, जरूर आती थी। हालांकि तहज्जुद की नमाज का वक्त है, दूर दूर से औरतें मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने के लिए आती थी, वो तहज्जुद घर में भी पढ़ सकती थी, लेकिन क्यों आती थी कि दो चीज के लिए, कि या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम फजर की नमाज पढ़ेंगे तो हमें बरकत मिलेगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ एडवाइस करेंगे तो हमें उनकी एडवाइस से फायदा होगा। आपने मसला नहीं पढ़ा, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में है कि ईद के दिन औरतें ईदगाह के अंदर में जाती थी और जिन औरतों को जो हैज वाली औरतें होती थी वो तो नमाज नहीं पढ़ सकती लेकिन वो भी जाती थी, उनकी क्या जरूरत है, नमाज तो पढ़ना नहीं है। मालूम होता है उनका असल मकसद नमाज पढ़ना नहीं था, उनका असल मकसद वहां कोने में बैठेगी जब नमाज से पहले या नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वाज़ और नसीहत करेंगे तो उनको सुनेगी, ये चीज है। इतना शौक था उनके अंदर, घर में नमाज तो पढ़ लेते हैं इबादत, लेकिन जो नमाज में नूर पैदा हो, नमाज में एक किस्म का शौक और जज्बा पैदा हो और ताजगी ईमान की पैदा हो, वो सब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने पर ये चीजें पैदा होती है। एक साहबी हाजिर हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगी अल्लाह के नबी ये मर्द हजरात तो हमसे आगे निकल गए। पूछा वो कैसे, आपके साथ जमात में शरीक होते हैं, पीछे नमाज पढ़ते हैं और हम औरतें घरों में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, उनकी इज्जत की हिफाजत करती है और हम वो नेकियां हम नहीं कर सकती जो ये लोग कर रहे हैं आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल करने वाली ने बड़ा अच्छा सवाल किया, सवाल ही किया था औरत ने, कितना अच्छा सवाल, ये तो आगे बढ़ गए, हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें भी कब्र में जवाब देना है, थारी मर्द थोड़े मरने वाले, औरतें जिंदा रहने वाली, उनको भी तो मरना है, सभी को जाना है। फिर आपने फरमाया जो औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है, अल्लाह के नबी देखो कैसी तालीम देते हैं, फरमाया तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है कि ये लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते तो सवाल ज्यादा है। फरमाया सुनो, जो औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है अल्लाह ताला उसको मस्जिद में नमाज पढ़ने के बराबर यानी मेरे पीछे नमाज पढ़ने के बराबर सवाब दे देता है। देखो, तो जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़े और औरत घर में पढ़े सवाब में देखो बराबर है। और यह भी फरमाया जो औरत बच्चे की वजह से रात को जागती है, छोटा बच्चा है ना, बीमार हो गया, फ्लू हो गया, फुला हो गया, दूध पीने वाला है या भूखा है या पेशाब लगी है या कुछ है, जाग रही है, जागना पड़ा उसको, इधर शोर तो रात दिन को काम करता है, वही जागेगी बेबी सिटिंग। अल्लाह ताला उस औरत को जागने पर अल्लाह के रास्ते में जाने वाले मुजाहिद का सवाब देते हैं। अल्लाह के रास्ते में एक बंदा मुजाहिद बनकर जाता था उस जमाने में, ऐसा सब उस जमाने की तो हदीस ही है, फरमा अल्लाह के नबी ने कि उनको मुजाहिद के बराबर घर में थोड़ी देर जागने पर सवाब मिलता है। कौन सा मुजाहिद, जो दुश्मनों की सरहदों पर रात भर जागता रहता है कि दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री पर हमला न करें तो वो जागते रहते हैं, उनको जो सवाब मिलता है इस्लामिकली वो सवाब उस औरत को मिलता है जो औरत कुछ देर के लिए अपने बच्चे की फिक्र में जाग करके बच्चे की तरबियत करती है, उसके नेपी बदला दिया या उसके कपड़े बदला दिया या उसका बिस्तर पेशाब कर दिया, साफ कर दिया, उठ के उसको ले गई, तो उस मुश्किल तो है ना, पूरा दिन काम करना, रात में फिर उठना बच्चों के लिए, और कभी तो छोटा बच्चा हो तो बार बार दूध पीने के लिए जागता है, ये कोई आसान काम है, वो तो हमने मुश्किल किया कि हम पूरा दिन काम करते फिर रात में भी बीवी के ऊपर फिर जुल्म कि हम उठने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए बुध का दिन, वेडनेसडे का दिन, क्योंकि उस दिन में आप खाली होते थे, और मैंने सुनाया था बुध का दिन हदीस में आता है असर के बाद दुआ बहुत कबूल होती है, बुध के दिन असर से मगरिब के दरमियान दुआ बहुत कबूल होती है, एक साहब ही फरमाते हैं, जब भी कोई परेशानी आती थी तो अपने आलो औलाद को कहते थे इंतजार करो, इंतजार करो, वेनेसडे आने को दो, वेनेसडे आएगी हम असर के बाद दुआ करेंगे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेनेसडे को बैटल ऑफ ट्रेंच के लिए असर के बाद दुआ फरमाई थी, अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। इसलिए साहब किराम उस वक्त क्या करते थे, वो दुआ फरमाते रहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत औरतों को क्या कह रहे हैं, वेनेसडे में एक दिन दिया था, वेनेसडे में एक दिन उनका दर्स होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह साहब किराम भी बैठ जाते थे दूसरी तरफ और औरतें आराम से सुनती थी अल्लाह के नबी की बातों को। तो सहाबियात को एक इल्मी जौक था कि चलो भाई आज तो वेनेसडे है, वेनेसडे कब आएगा, हम दर्स में जाएंगे, हम वेनेसडे या तो ये आज क्या है, वेनेसडे है ना, सुभान अल्लाह, हमारा भी वेनेसडे ही है, हमें तो जहन में है ही नहीं, वो तो मेरा देखो हमने भी वेनेसडे ही मुतय्यन किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध का दिन वेनेसडे को उनके लिए भी मुतय्यन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से हम ये दर्स करते रहते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको जो बात कही जाती है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं औरतों के लिए कि सहाबियात के कितने फजाइल है, सहाबियात ने कैसे कैसे इल्म हासिल किया है, बड़े बड़े सहाबे किराम को बतलाने वाली कौन है औरतें, उन तमाम पर इंशाल्लाह फिर जिंदगी बाकी रहेगी बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصلي على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا الله هم سب کے گناہوں کو معاف فرما يا الله هم سب کے گناہوں کو معاف فرما يا الله هم سب کے گناہوں کو معاف فرما يا الله هم سب پر رحم فرما يا الله هم سب پر رحم فرما يا الله هم سب پر کرم فرما يا الله تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ لانے والا بھی تو ہی ہے، بٹھانے والا بھی تو ہی ہے، اور دماغ میں ڈالنے والا بھی تو ہی ہے، اور سنوانے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ جب تو لے آیا ہے تو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بیٹھنے کو قبول بھی فرما، اے اللہ تو مقبول بھی فرما، اور اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی برکت سے الہ العالمین ہم سب کے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ برکتوں کے فیصلے فرما، نجات کے فیصلے فرما، اے اللہ برائیوں سے گناہوں سے ہمیں ہماری آل اولاد کو ہمارے گھروں میں ایک ایک فرد کو ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما، اے اللہ بیماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرما، مہلک ان بیماریاں اے اللہ ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ آواز جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ بہت ساری عورتیں اپنے گھروں کا کام کاج چھوڑ کر اور ہمارے مرد حضرات کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، ایک ایک قدم کو رحمت کا ذریعہ بنا، ایک ایک قدم کو نجات کا ذریعہ بنا، ایک ایک قدم کو مغفرت کا ذریعہ بنا، یا اللہ یا رحمان جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں مکسر کے ذریعے سے، الہ العالمین ریسیور کے ذریعے سے سننے والے، ان تمام کی بھی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، اے اللہ مردوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بھی بیمار انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ایمان پر قائم دائم فرما، موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے دیندار بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے دائی بنا، اولیاء متقین میں سے بنا، یا اللہ یا رحمان ہمارے گھروں سے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، حلال کھانے کی اور کمانے کھانے کی. اے اللہ توفیق نصیب فرما حرام سے. اے اللہ ہم سب کی, ہماری آل اولاد کی, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مرنے کے بعد قبر کے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا آسان کر دینا. اے الہ العالمین ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا. اے اللہ جہنم سے حفاظت کر لینا. اے اللہ قیامت کے دن میدان محشر کی تکالیف سے ہم سب کی حفاظت کر لینا. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. پانی بھی ایسا نصیب فرما کہ انہوں نے گلاس ہاتھ میں لیا ہو اور انہوں نے اپنا منہ پانی میں لگایا ہو اور ان کا بچا ہوا پانی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی سچی پکی محبت نصیب فرما. بے حساب جنت میں داخل ہونا نصیب فرما. اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما. تیرے غضب اور جلال سے حفاظت فرما. عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا. اے اللہ ان کے ساتھ جنت میں جانے والوں میں سے بنا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان مجمع میں جو بھی آمین کہنے والے جن کے آمین تجھے پیاری ہو. اے اللہ ان کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر ہماری دعاؤں توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمۃ